मेरे अजीज नौजवान दोस्तों नमस्कार। आज 1 फरवरी 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं लोकेश मुदगल, आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, इंद्रजीत कुमार पटना बिहार से हैं और संजय कुमार रुड़की उत्तराखंड से हैं। तो लोकेश, इंद्रजीत और संजय, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। मित्रों, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं आप सबको देनी होती हैं। सूचना यह है कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी, साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। एक साप्ताहिक प्रश्न आपको दिया जाएगा, वीकली क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ताकि आप मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभ्यास कर सकें और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं नया भारत पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। पहली बात तो यह दोस्तों कि आज बजट आ रहा है, आएगा, आ चुका होगा, जो भी स्थिति हो। तो बजट पर मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, हड़बड़ी में बात करने का कोई अर्थ नहीं है। इस पर थोड़े से एडिटोरियल कमेंट्स भी आ जाएंगे, लोगों के व्यूज, आर्टिकल्स। तो मोस्ट प्रोबेबली सोमवार या मंगलवार को हम लोग बजट पर बातें करेंगे, इसलिए मैं बजट पर जानबूझकर आज बातें नहीं कर रहा हूं, बावजूद इसके कि कुछ बातें मुझे मालूम है। दूसरी बात कि इस बार जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है वो प्रस्तुत नहीं, इकोनॉमिक सर्वे जिसे हम कहते हैं, वो प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सामान्यतया बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है जिसमें साल भर के अर्थव्यवस्था की जो स्थितियां रहती, यहां तक कि सामाजिक सोशल सेक्टर्स की भी जानकारियां दी जाती हैं, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उसमें कुछ तथ्य होते हैं, नए आंकड़े होते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में भी जानकारियां होती हैं, उसका एक छोटा सा पोर्शन जो सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं आया है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि जब फुल बजट आए उस समय शायद इकोनॉमिक सर्वे भी प्रस्तुत किया जाए। हाँ, लेकिन कल आपने हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका भाषण जरूर सुना होगा। अब मैं उसी पर कुछ बातें करूंगा मुख्य विषय के तहत, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी दो घटनाओं की चर्चा करना चाहूंगा जो मूलतः अखबारों से मैंने ली है। इसमें एक क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स, दैनिक हिंदुस्तान का, जो भूटान को लेकर है, भारत और भूटान के संबंधों को लेकर। इनफैक्ट भारत और भूटान के संबंध बहुत ही निकट के रहे। भूटान तो बहुत छोटा सा देश है, आप देखेंगे सिक्किम से थोड़ा सा आप उत्तर की तरफ उतर जाएंगे और यहां तक कि बाई रोड आप भूटान पहुंच सकते हैं। हिमालय की तराई में हिमालय क्षेत्र का देश है भूटान, और बहुत छोटा सा प्यारा देश है, बौद्ध धर्मावलंबी देश है, और भारत के बहुत अच्छे संबंध भूटान के साथ रहे हैं और अभी भी हैं। आपको डोकलाम विवाद मालूम होगा, एक साल पहले जहां चीन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो भूटान ने बिल्कुल उस पर अपना दावा पेश किया, भारत ने भूटान का समर्थन किया और उसका नतीजा यह हुआ कि चीन को वहां से पीछे हटना पड़ा। वहां भूटान बहुत मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा था, और आपको यह भी मालूम होगा कि अभी भूटान के जब लीडर भारत आए थे तो भारत ने बकायदे, प्रधानमंत्री आए थे भूटान के नए प्रधानमंत्री, तो 4500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही थी, और भारत ने यह भी कहा था कि उनको अगर अपने एक्सपोर्ट फैसिलिटीज के लिए कुछ पैसों की धन की जरूरत होगी तो 400 करोड़ रुपए अलग से भी दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन अभी एक जो घटना घटित हो रही है वो ये कि चीन का एक जो प्रतिनिधि मंडल है, वो सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल है, वो भूटान जा रहा है। उसको लेकर के भारत थोड़ा सा चिंतित है। चिंतित इस मायने में है कि भूटान चीन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा था, तो ये क्यों अब इनका प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। और पिछले साल जो भूटान में चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जो प्रधानमंत्री आए हैं, उन प्रधानमंत्री का जो झुकाव है वो थोड़ा चीन की ओर है। चीन की ओर क्यों है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन आप ध्यान में रखें, इस बात को आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल करेंट डेवलपमेंट है। और वो ये है फ्रेंड कि जो भूटान है उसका जो मेन सोर्स है इकोनॉमी का, कह लीजिए, वो जल विद्युत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और वो जितनी भी बिजली पैदा करता है जल विद्युत, उसका 80% भाग वो निर्यात कर देता है, एक्सपोर्ट करता है, और उसकी ज्यादा एक्सपोर्ट की जो खरीदी होती है वो भारत के द्वारा होती है। अब भूटान पर्यावरण के कारण अपने जल विद्युत को कम करना चाह रहा है, उसके प्रोडक्शन को कम करना चाह रहा है। बट नेचुरली कि जब जल विद्युत के प्रोडक्शन को कम करेगा तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, और जब एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा तो उसकी आय कम हो जाएगी। तो अब वो क्या करे, तो ऐसे में अब उसने चीन की तरफ देखने की शुरुआत की है कि शायद चीन एक कोई विकल्प उपलब्ध करा दे। तो ये भारत के लिए एक चुनौती है, और बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आप देखिए कि चीन धीरे धीरे नेपाल के बहुत निकट पहुंच गया है, कहीं ऐसा ना हो कि भूटान के भी वो बहुत निकट पहुंच जाए। लेकिन उतना आसान भी भूटान के लिए नहीं होगा, क्योंकि चीन ने जिन देशों में इन्वेस्टमेंट किया था अब वे देश बकायदे चीन के विरोध में खड़े हो गए हैं, जिसमें आप मालदीव और इन सब देशों के नाम बीच बीच में पढ़ते भी होंगे। तो ये एक नया डेवलपमेंट्स है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से वाच कीजिएगा। दूसरा, मैं आपको एडिटोरियल कमेंट राष्ट्रीय सहारा का प्रोवाइड कर रहा हूं अफगानिस्तान में शांति की बहाली को लेकर के। अब लगभग ये निर्णय हो गया है कि 1.5 साल के अंदर अफगानिस्तान में जो अमेरिका की सेनाएं हैं वो धीरे 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 वापस चली जाएंगी। इसका मतलब है कि अब अफगानिस्तान में दो शक्तियां रह जाएंगी, एक तो अफगानिस्तान की जो सरकार है अभी, और दूसरा तालिबान। ये जो तालिबान है एक प्रकार का आप कह लीजिए कि आतंकवादी गुट कह लीजिए या मिलिटेंट गुट कह लीजिए, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। और भारत इस तालिबान गुट से लगातार परेशान रहा है, भारत में बहुत से आतंकवादी गतिविधियों में ये शामिल रहा है, और पाकिस्तान का हाथ इस तालिबान के पीठ पर होता है। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका की सेना वापस चली जाएगी अफगानिस्तान से, तो नो डाउट कि तालिबान शक्तियां जो हैं वो मजबूत होकर के खड़ी होंगी। हालांकि तालिबान ने यह कहा है कि वो शांति बनाए रखेगा और सरकार के साथ समझौता करके चलेगा, यानी कि जो काबुल की सरकार है, लेकिन उनकी बातों पर पूरा विश्वास कर पाना उतना आसान नहीं है। तो इसलिए अब भारत को थोड़ा सा धैर्य रख करके और इस समस्या के निदान के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी, आप देखते हैं कि अफगानिस्तान भले हमारा जो एकदम पड़ोसी राष्ट्र ना हो, लेकिन हमसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, और भारत अफगानिस्तान के संबंध वैसे भी बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान के कितने पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं जो जिनमें भारत सहयोग कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, अब आइए मैं मुख्य विषय की बात करता हूं। कल आपने राष्ट्रपति जी का जो संसद के संयुक्त अधिवेशन में उन्होंने भाषण दिया वो शायद सुना होगा, और नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, आज अखबारों में उसकी रिपोर्टिंग है, आप उसे देख सकते हैं। मित्रों, संसद का जब भी बजट सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों एक साथ सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, सभी मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, और उसमें राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होता है। यदि आपने सुना हो तो एक शब्द राष्ट्रपति बार बार इस्तेमाल करते हैं, मेरी सरकार, मेरी सरकार, है ना। अब आपको लग सकता है कि भई ये तो मोदी जी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो संयुक्त गठबंधन उनकी सरकार है, तो राष्ट्रपति मेरी सरकार क्यों कह रहे हैं। जब आप संविधान उठा करके देखेंगे तो संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति की ही सरकार है, मैं उसकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो राष्ट्रपति की ही सरकार है, वो तो प्रधानमंत्री को के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन करते हैं खुद को सलाह लेने के लिए कि ये हमें सलाह देंगे। तो जो सरकार है संवैधानिक दृष्टि से वो राष्ट्रपति की ही होती है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन में कल बोल रहे थे, इनफैक्ट उस पूरे के पूरे उनके स्पीच को, भाषण को मंत्रिमंडल की स्वीकृति होती है। राष्ट्रपति अपनी तरफ से नहीं बोलते, क्योंकि मंत्रिमंडल उन्हीं का ही है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया अगर संवैधानिक दृष्टि से देखे तो स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल ने उसे स्वीकृति दी है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति वो बोल रहे हैं। जब राष्ट्रपति का ये जो भाषण होता है उसमें सामान्यतया दो चीजें होती हैं। पहली तो यह कि मेरी सरकार ने, यानी कि राष्ट्रपति की सरकार ने, व्यावहारिक रूप में प्रधानमंत्री की सरकार ने अभी तक अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। जैसे अभी लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं, और चूंकि अब बहुत थोड़ा वक्त बच गया इसलिए आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी जो विजन है 2022 का उसकी चर्चा कहीं कहीं बीच बीच में आई है। इस दौरान सरकार जो आंकड़े पेश करती है, यानी कि राष्ट्रपति जो आंकड़े पेश करते हैं, मान करके चलिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो बहुत ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं। देखिए पार्लियामेंट में वो बात कही जा रही है और जो बात पार्लियामेंट में कही जा रही है उसकी बहुत सेंटिटी होती है, उसका बहुत वजन होता है, वो झूठ नहीं हो सकता, उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो इन आंकड़ों का इस्तेमाल आप बाकायदे अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं पूरे दमखम के साथ। दोस्तों अब क्या राष्ट्रपति के इस भाषण के आधार पर सिविल सर्विस का कोई प्रश्न बन सकता है? मतलब मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कभी कभी इस ढंग से भी सोचना चाहिए। जब मैंने इस तरीके से सोचने की कोशिश की तो पूरे भाषण को सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, एक प्रश्न तो बन सकता है और बल्कि बनना ही चाहिए, और प्रश्न बड़ा बड़ा मजबूत और बड़ा सही प्रश्न होगा, और वह प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान सरकार ने नए भारत के निर्माण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, या नए भारत के निर्माण के कौन कौन से तत्व वर्तमान में मौजूद हैं, यानी कि नया भारत, राइट? नया भारत आप किसे कहेंगे, सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है, इसको आधार बना करके हो सकता है कि सिविल सर्विस में कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। और वैसे भी सन 2018 में, मतलब आप कह लीजिए कि अभी पिछले साल के ही लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने बकायदे नए भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी, और जो मैं 2018 की बात कर रहा हूं, आप देखिए कि हमारी आजादी के 75 वर्ष यानी कि 75वीं सालगिरह थी, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन होता है। तो जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नया भारत, देखिए जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो अब आप नाम हटा दीजिए, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मतलब देश कह रहा है कि नया भारत, हम नया भारत बनाएंगे, तो नया भारत बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो यहां ये प्रश्न बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अब आप इसको हैंडल कैसे करेंगे? तो मित्रों हैंडल करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको यह सोचना होगा कि नया भारत का मतलब क्या है। नया भारत कोई टाइम से रिलेटेड नहीं है कि आज का भारत, सन 1947 का भारत, आज का भारत। नया भारत का मतलब होगा कि वह भारत जो अपने ट्रेडिशंस तरीके से जीवन जी रहा था, चल रहा था, और ये तो ओल्ड भारत हो गया, क्योंकि हम नया नाम यहां देख रहे हैं, तो बट नेचुरली कि ये ओल्ड भारत हो गया, तो अब हम ऐसा क्या क्या कर रहे हैं जो एक ऐसे भारत का निर्माण करेगा जो 21वीं शताब्दी के लिए उपयुक्त होगा, 21वीं शताब्दी के लिए। और बकायदे यह जो नया भारत होगा यह विश्व शक्ति के रूप में होगा, और विश्व की जो दूसरे बड़े राष्ट्र हैं, जो दूसरी बड़ी शक्तियां हैं, उनके पैरेलल होगा। एक नई तरह की फिलॉसफी को व्यक्त करेगा, एक नई तरह की उसकी अर्थव्यवस्था होगी, नई तरह की उसकी जीवन शैली होगी, सब कुछ एक नया नया ऐसा होगा जिस पर हम आगे के 100-200 साल खड़े रह सकते हैं। वो नया भारत क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? मित्रों जब आप इस तरह से नए भारत को परिभाषित कर लेंगे कि इसका क्या मतलब है, फिर आप अब राष्ट्रपति जी ने जितनी भी चीजें गिनाई हैं, बताई हैं, बहुत डिटेल में बताई हैं, उनमें से आपको छांटना होगा कि नए भारत में आप किन किन कदमों को शामिल करना चाहेंगे, किन किन उपायों को शामिल करना चाहेंगे। यानी कि उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सब नए भारत के ही निर्माण के लिए तो थी नहीं, उसमें कुछ बातें नई भारत के लिए थी, क्योंकि आपने नए भारत को परिभाषित किया है। बट नेचुरल कि जो नया भारत होगा उसमें सबसे ज्यादा जो असर होगा वो टेक्नोलॉजी का होगा। हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आ गए हैं। तो नया भारत क्या होगा जो अपने ट्रेडिशनल से अलग अलग है, मैं आपको जल्दी में कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन, ये नया भारत है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये नया भारत है। जन धन योजना, ये कैशलेस सोसाइटी में हम जा रहे हैं, जन धन योजना ये नया भारत है। स्मार्ट सिटी नया भारत है। स्वच्छता अभियान नया भारत है। यहां तक कि गांव में जो गैस सिलेंडर पहुंचाए गए हैं, उज्ज्वला योजना, ये नया भारत है। घर घर में बिजली पहुंचा दी गई, सौभाग्य योजना, ये नया भारत है। उड़ान परिवहन, एयर, नया भारत है। कि अब गांव का व्यक्ति भी, अब हम ट्रांसपोर्ट के लिए, आप सोचिए कि परिवहन के साधनों के लिए वायुयान का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह नया भारत है। बुलेट ट्रेन, कुछ दिनों पहले ही वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, यह नया भारत है। और यहां तक कि तीन तलाक जैसे प्रथाओं को रोकने के लिए जो कानून की बात हो रही है, यह नया भारत है। गरीबों को आवास, हम पक्के मकान बना करके देंगे, झुग्गी झोपड़ी में वो नहीं रहेंगे या खुले आसमान में नहीं रहेंगे, वो क्या कहते हैं, मलिन बस्तियों में नहीं रहेंगे, ये नया भारत है। तो मित्रों, कुछ पॉइंट्स मैंने दिए और मैं समझता हूं कि इतने पॉइंट्स अपने आप में सफिशियंट होंगे नए भारत के निर्माण के बारे में उत्तर लिखने के लिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतनी ही बातें। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, आप सब देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, श्यामू यादव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, अर्जुन पाटीदार उज्जैन से, अमीर हुसैन न्यू दिल्ली से, केशव भारद्वाज, संजय कुमार सहारनपुर से, पूजा सिंह परबतसर राजस्थान से, और अजमेर बघेल, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें दो दिनों के लिए। ये दो दिनों की छुट्टियां आपको एकदम ताजा बनाएं और खूब ऊर्जा से भर दें, ताकि सोमवार का पूरी गर्मजोशी के साथ आप सब स्वागत कर सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।